नमस्कार भारत, तारीख 27 जुलाई, दिन गुरुवार, मैं हूं विनीत खरे। नीतीश कुमार ने कल दिया था इस्तीफा, आज फिर लेंगे पद की शपथ।
जल्द से जल्द हम विश्वास मत प्राप्त करने के लिए तैयार हैं।
उस जनता के साथ इन्होंने घात किया है, इसलिए एक विश्वासघात दिवस हम लोग मना रहे हैं।
आदित्यनाथ पहुंचे अयोध्या, बोले राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर हो विचार।
संवाद से समाधान हो अच्छा होगा, इस संवाद को बनाने के लिए दोनों पक्षों को आपस में मिलना चाहिए।
अजीत डोवल आज चीन में ब्रिक्स बैठक में होंगे शामिल, क्या डोकलाम मुद्दे पर बात होगी, साथ में बात बाढ़ से प्रभावित इलाकों की भी और खेल की खबरें भी। लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। बिहार में नीतीश कुमार आज फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस बार वो महागठबंधन से अलग होकर बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाने जा रहे हैं। उनके साथ आज पटना में सुबह 10 बजे बीजेपी के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी शपथ लेंगे। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव की अगुवाई में आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राजभवन तक कल देर रात मार्च किया और तेजस्वी यादव ने राज्यपाल से मुलाकात की और उसके बाद कहा कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, उसे सरकार बनाने का मौका मिलना बनाने का दावा पेश करने के लिए मौका दिया जाना चाहिए। उन्होंने नीतीश कुमार पर बिहार के लोगों के जनादेश का अपमान करने का आरोप लगाया।
कोई भी आप मेरे कार्यकाल को देख ले, सारी विकास की बातें हमने की हैं, काम की बातें की हैं, सकारात्मक बातें की हैं। अब नकारात्मक लोगों के साथ, जो लोग डीएनए का गाली दिए उनको, जिनके लिए बड़ा बड़ा कैंपेन चलाया गया डीएनए को लेकर के, उसके साथ आज मिल रहे हैं तो लोग नहीं जानता है कि किसका क्या चरित्र है। आप बताइए ना, मेरे को मोहरा बनाया गया, तेजस्वी तो एक बहाना था, बीजेपी के साथ इनको जाना था।
ये थे तेजस्वी यादव, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमरीकी सेना में ट्रांसजेंडर लोगों के काम करने पर रोक लगाने के अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को लेकर काफी नाराजगी है। सीनेट की सशस्त्र सेवा कमेटी के रिपब्लिकन प्रमुख जॉन मैकेन ने कहा कि कोई भी अमरीकी जो जरूरी काबिलियत रखता है उसे सेना में काम करने की इजाजत होनी चाहिए। वहीं डेमोक्रेट सांसद जो कैनेडी ने कहा कि राष्ट्रपति का फैसला ट्रांसजेंडर के आधारभूत अधिकार का उल्लंघन है, जिससे उन्हें अन्य लोगों की आजादी के लिए अपना जीवन कुर्बान करने का अधिकार मिलता है। वहीं कई कट्टरवादी कार्यकर्ताओं और रिपब्लिकन नेताओं ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले का स्वागत किया है। अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के स्वास्थ्य कानून के एक बड़े हिस्से को खत्म करने की रिपब्लिकन नेताओं की कोशिश को फिर से अमेरिकी सीनेट में झटका लगा है। 24 घंटे में ये दूसरी बार है कि सीनेट ने ओबामा केयर में सुधार की कोशिश को खारिज किया है। कुछ रिपब्लिकन नेताओं ने उस प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग की है जिसमें कहा गया था कि इसकी जगह नया कानून लाने के लिए 2 साल का समय दिया जाना था। अब ओबामा केयर में कम बदलाव कर नया स्वास्थ्य कानून लाने की रूपरेखा पर विचार किया जाएगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में अमेरिका में लाखों लोगों को स्वास्थ्य बीमा दिलाने वाले ओबामा केयर को खत्म करने का वादा किया था। वेनेजुएला में नया संविधान लिखने के लिए नई असेंबली के गठन पर रविवार को वोटिंग से पहले विपक्ष ने 48 घंटों की हड़ताल का आह्वान किया है। कारकास और कई शहरों में सड़कें बंद कर दी गई हैं। मेरिदा शहर में प्रदर्शनकारियों और पुलिस की झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। इस बीच अमरीका ने इस हड़ताल के पहले दिन वेनेजुएला पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अमरीका ने वेनेजुएला के 13 राजनीतिक और सैनिक अधिकारियों पर रोक लगाई है। अमरीका ने निकोलस मादुरो से रविवार की वोटिंग को रोकने की अपील की है। अमरीका ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है। वहीं वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अमरीका के प्रतिबंध को खारिज किया है। वेनेजुएला पर लगाए गए प्रतिबंध गैर कानूनी है, ये गुस्ताखी और किसी भी देश पर प्रतिबंध लगाने की महत्वाकांक्षा है। अमरीका में बैठे साम्राज्यवादी क्या सोच रहे थे कि वो पूरे विश्व की सरकार है, लेकिन वेनेजुएला इसे खारिज करता है। ये थे वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के शब्द। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा में नमस्कार भारत, आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी सुन रहे हैं। मैं हूं विनीत खरे। कल शाम अचानक खबर आई कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है, और उसके बाद कल रात से आज सुबह तक बिहार में राजनीतिक परिदृश्य तेजी से बदला है। भाजपा ने नीतीश को इस्तीफे के लिए शाबाशी दी। आनन फानन में भाजपा ने नीतीश को समर्थन देने की घोषणा की, और कार्यवाहक राज्यपाल से मिलने उनके आवास पर भी भाजपा नेता पहुंचे, और फिर आज नीतीश कुमार के फिर से शपथ लेने की बात सामने आई है। खुद को पिछड़ता देख तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी राज्यपाल निवास पर देर रात पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में नीतीश कुमार को खरी खोटी सुनाई। रात भर चले राजनीतिक ड्रामे पर पटना से नीरज सहाय एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, जो तड़के सुबह तक राज्यपाल आवास के सामने मौजूद थे।
बुधवार शाम करीब 6:30 बजे नीतीश कुमार ने कार्यवाहक राज्यपाल केसरी नाथ त्रिपाठी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके बाद उन्होंने मीडिया को संबोधित किया और कहा कि
मेरे जैसे व्यक्ति के लिए इस सरकार का चलाना संभव नहीं है। हमने देख लिया कि अगर कोई अब रास्ता नहीं है तो खुद ही नमस्कार करो, किसी को खुद ही वो जगह त्यागो। हमने वो जगह त्याग दिया है, हमने मुनासिब समझा अपने आप को अलग कर।
उसके बाद तेजी से बदलते राजनीतिक घटनाक्रम में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने तत्काल नीतीश कुमार को बिना शर्त समर्थन दे दिया। थोड़ी देर बाद यह भी साफ हो गया कि भाजपा भी सरकार में शामिल होगी। रात के 10 बजे मुख्यमंत्री के आवास में जदयू और एनडीए विधायकों की बैठक आनन फानन में बुलाई गई, और आधी रात से पहले नीतीश कुमार को एनडीए और जदयू विधानमंडल दल का नेता चुन लिया गया। रात 11:30 बजे नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी के नेतृत्व में नए गठबंधन के विधायकों ने राज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का अपना दावा पेश कर दिया। राज्यपाल के साथ जदयू और एनडीए नेताओं की बैठक लगभग 1.5 घंटे चली। बैठक के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि गुरुवार को सिर्फ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का शपथ होगा। उनके अनुसार
पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी और हम पार्टी और दो निर्दलीय कुल मिलाकर 132 विधायकों के समर्थन का पत्र हम लोगों ने राज्यपाल को सौंपा है। राज्यपाल ने माननीय मुख्यमंत्री को शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया है, और कल सुबह 10 बजे माननीय मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण और विश्वास मत प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने महामहिम से कहा है कि जल्द से जल्द हम विश्वास मत प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। जो भी तिथि निर्धारित होगी उस तिथि पर हम लोग विश्वास मत हासिल करें।
उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे से नाराज राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने शाम को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नीतीश कुमार के जीरो टॉलरेंस को धोखा बताया। वहीं नीतीश के इस्तीफे का विरोध करने पार्टी के नेता रात करीब 2:30 बजे राजभवन तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में पहुंचे और राज्यपाल से मिलकर अपना पक्ष रखा। विरोध प्रदर्शन में शामिल पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने नीतीश कुमार पर महागठबंधन तोड़ने का आरोप लगाया और कहा कि
उस जनता के साथ इन्होंने घात किया है, इसलिए एक विश्वासघात दिवस हम लोग मना रहे हैं राज्य व्यापी। और राज्यपाल जी ने और संविधान का गला घोटा है। 11 बजे हम लोग को समय दिया था और 10 बजे सुनते हैं शपथ ग्रहण करा रहे हैं।
आज सुबह 10 बजे शपथ ग्रहण के साथ नीतीश कुमार 4 साल बाद एनडीए में लौट रहे हैं, तो भाजपा 20 महीने बाद उनके साथ फिर सरकार में शामिल हो रही है। अब देखना यह है कि नई सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन के एजेंडे पर कितना खरा उतरती है। नीरज सहाय, बीबीसी पटना।
और मैंने कल देर रात जनता दल यूनाइटेड के सांसद हरिवंश से बात की और उनसे पूछा कि क्या नीतीश कुमार का इस्तीफा देना सोचा समझा फैसला नहीं, जब कुछ महीनों से उन पर भाजपा की ओर नरम रुख अपनाने के आरोप लग रहे थे, चाहे वो नोटबंदी का समर्थन हो या फिर रामनाथ कोविंद का राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर समर्थन।
मैं इस बात को इस ढंग से कहना चाहूंगा कि वह अपने ढंग से अपने शर्तों पे राजनीति करते हैं। जब उन्होंने प्रणब मुखर्जी को समर्थन दिया तो बीजेपी के साथ थे और प्रणब मुखर्जी यूपीए के कैंडिडेट थे। नंबर दो कि वह जब एनडीए के साथ थे तब भी कहा था कि समान आचार संहिता पर सरकार कोई कदम न उठाए।
हरिवंश जी, आप देश में एक ऐसा माहौल है जब विपक्ष अपने आप को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है, मजबूत नेता हैं भाजपा के, देश के बड़े हिस्से पर भाजपा की सरकारें हैं, उन पर आरोप लगेंगे कि उन्होंने विपक्ष की जो यूनिटी है, एकता है, उसको गहरा धक्का पहुंचाया है और आखिरकार उन्होंने वही किया जो कई दिनों से चाहते थे करना, लेकिन बड़े ढके छुपे तरीके से कि मुझ पर कोई आरोप न लगे।
नहीं, ये आपका निजी विश्लेषण हो सकता है। देश को यह भी मालूम है कि उन्होंने समय समय पर कहा कि अगर विकल्प की राजनीति करनी है तो वह राजनीति मुद्दों और सिद्धांत पर आधारित होगी। उन्होंने आसाम का चुनाव था बिहार चुनाव के बाद, यह कमल को मालूम है, हालांकि सारी चीजें सार्वजनिक जानकारी में है। उन्होंने पहल की कि कैसे कांग्रेस आगे आए और आसाम में बड़ा गठबंधन बने, कांग्रेस आगे नहीं आई। इसके बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, उसमें उन्होंने पहल की कि यह काम कांग्रेस का है, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, सामने आए वो इस बात के लिए कोशिश करेंगे एक बड़ा गठबंधन नीतियों पर बने,
खैर। आखिरी सवाल आपसे, लालू प्रसाद यादव का कहना है और मैं इनको कोट कर रहा हूँ कि नीतीश कुमार पर आर्म्स एक्ट का केस है और उन्हें डर था कि अलग नहीं होते तो केंद्र सरकार शिकंजे में ले सकती थी, उन पर भी बहुत केस हैं, तो फिर वो खुद तो दूसरे से किसी से इस्तीफा मांग कैसे मान सकते हैं?
लालू जी आरोप पता नहीं कितने दशकों से लगा रहे हैं और किस किस तरह के आरोप लगाते रहे नीतीश जी पर दुनिया जानती है कि नीतीश कुमार का आचरण, नीतीश कुमार का व्यक्तित्व और किस तरह के वह काम करने वाले राजनेता है।
ये थे जनता दल यूनाइटेड के सांसद हरिवंश, और इस स्थिति में जो कि बिहार में है उस पर हमारे साथी संदीप राय ने बात की वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश से।
ये एक बड़ा झटका है क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में जिस शानदार ढंग से नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन चुनाव जीता था, बीजेपी को अपने बल पर बहुमत आया था, उसके बाद बिहार पहला बड़ा राज्य था जहां मोदी जी के विजय रथ को, जनादेश जो मिला उसमें बुरी तरह भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने परास्त किया। एक बड़ी विजय थी महागठबंधन की, खासकर गैर भाजपा गठबंधन उसके लिए। लालू प्रसाद और कांग्रेस पार्टी के लिए थोड़ी सी मुश्किलें ये हैं कि जनता दल यू में नीतीश कुमार के इस फैसले के खिलाफ एक गुट जरूर तैयार है, और जैसे जैसे उनकी भारतीय जनता पार्टी से नजदीकियां बढ़ रही थी पिछले एक डेढ़ महीने से, वैसे वैसे वो विरोध का स्वर जो है अंदरूनी बैठकों में भी उभर रहा था। दल बदल के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, ऐसे में जनता दल यू के जो असंतुष्ट विधायक हैं उनके लिए भी दल बदल करना काफी मुश्किल होगा। पर कोई कानूनी पेंच ना होता तो ये संभव बहुत था कि जनता दल यू में एक विभाजन बड़ा हो जाता।
क्या इस झटके के बाद कांग्रेस के नेतृत्व में जो विपक्षी एकता की बात हो रही थी वो कोई आकार ले पाएगी?
देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास एक दूरदर्शी नेतृत्व का अभाव है। कोशिश जरूर वो कर रहे हैं बार बार, लेकिन वो कोशिश आधी अधूरी है, और जिस तरह से राजनीतिक झटके लग रहे हैं विपक्ष की लामबंदी के की संभावना पर, उसे देखते हुए मुझे फिलहाल कोई नजर नहीं आती सूरत की कोई बहुत मजबूत विपक्षी एकता की तस्वीर बनेगी। इसके लिए जरूर इंतजार करना होगा। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो भाजपा गठबंधन है उसका रास्ता काफी निरापद दिख रहा है, काफी सहज दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में जो बाई इलेक्शन है वो बिहार के घटनाक्रम से उनका कोई बहुत डायरेक्ट असर नहीं होगा, लेकिन विपक्षी एकता पर तो निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा असर पड़ने जा रहा है, क्योंकि एक समय ऐसा था जब नीतीश कुमार को माना जाता था कि वो विपक्ष की तरफ से एक बड़े नेता के तौर पे, कद्दावर नेता के तौर पे इमर्ज करेंगे, और कई बार तो नीतीश कुमार के समर्थक कहते थे या उनकी पार्टी के प्रवक्ता भी कहते थे कि वो मोदी जी के विरुद्ध प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में इमर्ज कर सकते हैं अगले चुनाव में।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश, और हमारे साथ हरिता बहुत सारे अखबार लेके बैठी हैं। हरिता, सारे पत्रकार दिल्ली से भाग रहे हैं और पटना की ओर जा रहे हैं, और रात भर व्यस्त थे पत्रकार, सब कवर करने में, बाइट्स जुटाने में, इकट्ठा करने में। अखबार आपके सामने, सब कुछ बिहार पर ही ज़्यादातर खबर है?
जी बिल्कुल, नीतीश का नाम हेडलाइन में सबसे आगे, मैं हर अखबार में देख रही हूँ। नीतीश का इस्तीफा, बिहार में 20 माह बाद फिर जदयू भाजपा सरकार तय, ये नई दुनिया की हेडलाइन है। बात करें जनसत्ता के कार्टून से शुरुआत करते, जनसत्ता ने लिखा है तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अगर तुम नहीं जाते तो कुर्सी छोड़कर मैं ही जाता हूं, और बगल में भाजपा का हाथ नजर आ रहा है। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि बिहार में बीजेपी जेडीयू की सरकार की वापसी हो रही है और इसका सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को होगा, ये बाजी बीजेपी के खाते में जाएगी क्योंकि बिहार का जो ड्रामा है उसने 2019 की लड़ाई के लिए मंच सेट कर दिया है। और अखबार का लिखना है कि नीतीश जो है वो हिंदी भाषी राज्यों में ओबीसी यादव जो पूरा तबका है उसमें काफ़ी पॉपुलर हैं, और मोदी को चुनौती देने वाले विपक्ष के एक मतलब ऐसे नेता थे जिस पर कोई दाग नहीं था, ऐसे नेता बनकर वो उभरते नजर आ रहे थे, लेकिन अब जबकि वो नरेंद्र मोदी के साथ हाथ मिलाने जा रहे हैं, एक तरह से नरेंद्र मोदी जो है ऑब्वियसली वो नेतृत्व करेंगे, तो इसका फायदा बीजेपी को होगा क्योंकि जो भी समर्थक नीतीश कुमार के थे वो उसका फायदा बीजेपी को जाने वाला है और 2019 में जो है इसके लिए सबसे बड़ा फायदा बीजेपी के लिए है। इंडियन एक्सप्रेस में ही वरिष्ठ पत्रकार ज्योति मल्होत्रा ने एक लेख लिखा है कि 2013 में नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को हिटलर कहा था और 2015 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें बड़ी कड़वाहट भरी चुनाव प्रचार था और बहुत ही आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाए गए थे, लेकिन अब मोदी ने जो है वो नीतीश कुमार को, इन्होंने जो अंग्रेजी में टर्म यूज़ किया है वो ये है कि ईट हिज वर्ड्स, मतलब कि उन्हें अपने शब्द जो है वापस लेने पड़ेंगे, वो सारे उन्होंने मजबूर किया और एक तरह से जो है अपनी अपनी करारी हार का बदला जो है नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को अपने पाले में लाकर लिया है। जनसत्ता की बात करें, जनसत्ता ने लिखा है कि एक तीर से कई शिकार किए हैं नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल थे और लेकिन सीएम तो वो बन गए और लेकिन लालू का संख्या बल जो है लगातार उन्हें दबाव बनाए हुआ था उन पर। लालू की आरजेडी पार्टी के पास 80 सीटें हैं और वो सबसे ज़्यादा है, तो वो दबाव था और उससे वो काफ़ी परेशान थे और कई जो मंत्री थे, कई जो वरिष्ठ नेता थे आरजेडी के, वो भी अपना रसूख दिखाने की कोशिश कर रहे थे और इससे भी वो छुटकारा पाना चाहते थे। हिंदुस्तान टाइम्स का जो कार्टून है वो कहता है कि एक तरफ महाघोटाला बंधन था जो कि टूटता बिखरता नजर आ रहा है, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के हाथ में राखी है और लिखा है रक्षाबंधन।
बहुत शुक्रिया हरिता, और ये भी बता दें अपने श्रोताओं को कि हमारे साथ ही नितिन श्रीवास्तव भी अभी थोड़ी देर में पटना पहुंचेंगे, तो अगर आप bbchindi.com पर ताज़ा रिपोर्टें देखना चाहें, पढ़ना चाहें तो bbchindi.com पर आए। और नितिन, आपके लिए फेसबुक लाइव जो वहां से जो पटना का ताज़ा हाल है, विशेष इंटरव्यूज़ आपके लिए लेकर आएंगे, तो bbchindi.com का जो फेसबुक पन्ना है उस पर भी आप नज़र बनाए रखें।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 6155, 7995, 9915 और 11995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
और बिहार के बाद बात उत्तर प्रदेश की। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ बुधवार को दूसरी बार अयोध्या गए। अयोध्या में उन्होंने मंदिर मस्जिद विवाद के हल के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने और दोनों पक्षों में आपसी सहमति की बात की। सुनिए लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट।
योगी आदित्यनाथ अयोध्या में परमहंस रामचंद्र दास की बरसी के मौके पर पहुंचे थे, इसलिए राम मंदिर पर वो कुछ न बोलते ऐसा संभव नहीं था। योगी आदित्यनाथ न सिर्फ खुद मंदिर निर्माण के पक्षधर रहे हैं बल्कि उनके गुरु महंत अवैधनाथ मंदिर आंदोलन में परमहंस रामचंद्र दास के साथी थे। लेकिन आदित्यनाथ योगी ने मंदिर निर्माण के बारे में बोलने से पहले इस बात का खासा ध्यान रखा कि वो राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं।
श्री राम जन्मभूमि के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने और माननीय जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कुछ बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। मुझे लगता है कि हमें एक बार उस पर विचार करना चाहिए और हमें प्रसन्नता इस बात की होनी चाहिए कि बहुत शीघ्र इसमें दिन प्रतिदिन बहुत शीघ्र सुनवाई के लिए कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट अपने स्तर पर भी तैयार करने जा रही है। संवाद से समाधान हो अच्छा होगा, इस संवाद को बनाने के लिए दोनों पक्षों को आपस में मिलना चाहिए।
परमहंस रामचंद्र दास के समाधि स्थल पर योगी के पहुंचने से पहले इस जगह को प्रशासन ने खाली करा दिया था और साधु संतों को भी वहां से हटा दिया गया था, जिसे लेकर संतों में नाराजगी भी थी और संतों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद सुलझाने के लिए योगी ने आपसी सहमति की बात भले ही की हो, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो मुख्यमंत्री बाद में हैं, राम भक्त पहले। वहीं योगी की आपसी सहमति की अपील के बावजूद मुस्लिम पक्ष को नहीं लगता कि आपसी सहमति से इस विवाद का हल हो पाएगा। इस मामले में पक्षकार और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक जफर याब जिलानी कहते हैं,
चार मरतबा जो टॉप लेवल पे गुफ्तगू हुई उसमें आपसी सहमति इन लोगों का जो मकसद होता है कि मुसलमान अपना क्लेम सरेंडर कर दे उस पर मस्जिद, ये उनका आपसी सहमति का मतलब होता है। अब तक ये मुसलमान नहीं कर सकते क्योंकि मुसलमानों की ना वो मिल्कियत है और ना मुसलमान किसी मस्जिद को सरेंडर कर सकते हैं। आपसी सहमति बन नहीं सकती कभी, कोर्ट का फैसला ही एक वाहिद तरीका है। मुसलमानों की सारी तंजीमें हौसला बोर्ड हो, एक्शन कमेटी हो, कोई हो, सब ये कह चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही सिर्फ एक तरीका है इस मसले का।
योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद 31 मई को पहली बार अयोध्या आए थे और उन्होंने राम जन्मभूमि में पूजा अर्चना भी की थी। बताया ये भी जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ विधानसभा का चुनाव भी अयोध्या से लड़ सकते हैं, हालांकि इस बारे में न तो उन्होंने और न ही उनकी पार्टी ने कोई संकेत दिए हैं। योगी आदित्यनाथ फिलहाल गोरखपुर से लोकसभा सदस्य हैं और उन्हें मुख्यमंत्री बने रहने के लिए 19 सितंबर से पहले विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना जरूरी है। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल आज ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में हिस्सा लेने बीजिंग पहुंच रहे हैं। भारत और चीन के बीच डोकलाम में तनाव के बीच दोनों देशों में बातचीत की संभावना जताई जा रही है, लेकिन इस बीच चीन ने नरमी के संकेत दिए हैं। क्या हैं ये संकेत, इस पर बात की हमारे साथी संदीप राय ने बीजिंग में वरिष्ठ पत्रकार सैबल दास गुप्ता से।
यहाँ की मीडिया बार बार ये कह रही है कि इससे कोई फायदा नहीं होगा, ये ना समझे कि हमको हटा लेंगे। उसके बाद कल पहली बार यहाँ के विदेश मंत्री ने ये स्टेटमेंट दिया कि इसमें तो कोई बात ही नहीं है, इसमें तो हमारी जमीन पर भारत घुस आया है, भारत को चले जाना है। लेकिन आज चीन की जो शिंगवा न्यूज एजेंसी है, जो उनकी ऑफिशियल और सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है, उन्होंने चीन के एम्बेसडर जो दिल्ली में है उनको कोट करते हुए मोदी सरकार की आर्थिक मैनेजमेंट की बड़ी प्रशंसा की है और उन्होंने कहा है कि भारत का अर्थतंत्र बहुत अच्छा हो रहा है और चीन को बहुत इसमें बिजनेस या वाणिज्य करने की संभावनाएं नजर आ रही है। ये संकेत अपने ही कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को है और या अपने ही सिपाहियों को है कि आप भारत के प्रति उत्तेजित न हो, तो ये लगता है कि अभी थोड़ा सॉफ्टन होने की कोशिश कर रही है चीन सरकार।
तो क्या ऐसा माना जाए कि ब्रिक्स के NSA की जो मीटिंग है उससे पहले चीन की तरफ से इसको संकेत माना जाए एक तरीके का?
ये साफ संकेत है कि चीन इस पर बात करना चाहती है, लेकिन इसका माने ये नहीं कि चीन अपना तर्क भूल जाएगी। लेकिन पहले जो बोल रही थी कि जब तक आपका ट्रूप वापस नहीं जाता है तब तक हम बात ही नहीं करेंगे, उसमें परिवर्तन आया है कि कम से कम औपचारिक रूप में हम बात करने को तैयार हैं।
ग्लोबल टाइम्स जो वहाँ का सरकारी अखबार है जिसको माना जाता है कि वो सरकारी नजरिए को एक तरीके से रिफ्लेक्ट करता है, उसमें एक खबर आई है कि भारत और चीन के बीच में पश्चिमी शक्तियां हैं वो लड़ाने की कोशिश कर रही हैं, इससे भी एक संकेत जा रहा है कि का नजरिया नरम हुआ, क्या ऐसा है क्या?
नहीं, उनका रवैया ग्लोबल टाइम्स का रवैया न कमजोर है जब नरम है न कभी नरम होगा, क्योंकि ग्लोबल टाइम्स कम्युनिस्ट पार्टी के उस हिस्से को रिप्रेजेंट करती है जो कि लड़ने की बातें करती है। चाइना डेली उसका एग्जैक्ट उल्टा विपरीत है, जो शांति चाहती है। तो दो ऑपोजिट व्यूज हैं। ये पहली बार ये हुआ है कि डोकलाम को विषय को लेकर चीन का मीडिया में विभाजन हो गया है। जहां तक आज का एडिटोरियल का सवाल है जो US को उन्होंने कहा है, चाइना को डर इस बात का है कि ये मसला अगर बिगड़ा भारत के साथ और लड़ाई की बात हुई तो ठीक उसी वक्त US अमेरिका साउथ चाइना सी में अपना जहाज भेज के चीन पर दबाव डालेगी। तो दोनों तरफ चीन को नजर रखना पड़ेगा और परेशानी हो जाएगी।
चीन है उसकी अंदरूनी पॉलिटिक्स का भी क्या डोकलाम के स्टैंड ऑफ से कुछ संबंध है?
कि एक जबरदस्त पार्टी कांग्रेस होने जा रही है, इसमें दो मत नहीं है कि शी जिनपिंग फिर से यहाँ के प्रेसिडेंट और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बन के आएंगे। अब सवाल यह है कि ऐसे वक्त में जब पार्टी में इतना बड़ा परिवर्तन हर 5 साल में आता है, उस वक्त पे क्या आपको युद्ध चाहिए या नहीं चाहिए? तो क्या आज आप लड़ाई चाहते हैं या अपना विकास चाहते हैं?
अजीत डोवाल का जो दौरा हो रहा है उसमें क्या देखते हैं, कितनी संभावना है सफलता की या बातचीत की?
असल में ये है कि अगर चीन को लगता है कि भारत 2 कदम पीछे जाने को तैयार है और भारत को लगता है कि चीन 2 कदम पीछे जाने को तैयार है, तभी कोई बातें हो पाएगी। यहाँ के हमारे एम्बेसडर साहब भी यहाँ के बात कर रहे हैं, चीन के एम्बेसडर भी दिल्ली से बात कर रहे हैं। ये नहीं कि बातचीत चालू नहीं है, बातचीत 5 सप्ताह से चल रहा है। अब दोनों को कुछ कुछ कदम पीछे हटना है और एक साथ हटना है, और यही संकेत सुषमा स्वराज ने पार्लियामेंट में दिया था।
बीजिंग से सैबल दास गुप्ता। देश के कई हिस्से बाढ़ से प्रभावित हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। गुजरात के बाढ़ प्रभावित हिस्सों से हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। पड़ोस के राज्य राजस्थान और पूर्वी राज्य उड़ीसा भी बाढ़ प्रभावित हैं। असम में भी बाढ़ की वजह से लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। देश में कई जगह प्रशासन लाचार नजर आ रहा है। इसे लेकर हमारे सहयोगी नितिन श्रीवास्तव ने बाढ़, बांधों और इनसे जुड़ी आपदाओं के वरिष्ठ विश्लेषक हिमांशु ठक्कर से बात की।
भारत जैसे मॉनसून ड्रिवन क्लाइमेट जहाँ है ना, वहाँ पर बारिश की मौसम में बाढ़ आना एक नॉर्मल सिचुएशन है। लेकिन हर बार बाढ़ एक विभीषिका नहीं बनती है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है बाढ़ कब विभीषिका बनती है। कुछ ऐसी स्थिति पैदा होती है जिससे कि बाढ़ एक विभीषिका का रूप लेती है। कुछ कारण कुदरती भी होते हैं लेकिन बहुत सारे कारण मानव निर्मित होते हैं। दूसरी बात है कि बाढ़ की विभीषिका जो है उसका असर कुछ तरीके से कम किया जा सकता है। जैसे उसमें हम पहले से चौकन्ने हैं, हमारा जो फ्लड फोरकास्टिंग यदि ठीक है, हमारा मॉनसून फोरकास्टिंग ठीक है, तो उसके लिए एक तो हमको पहले से आगाह किया जा सकता है। दूसरी बात है कि उसके लिए प्रिपेयर्डनेस हो सकती है, तैयारी हो सकती है। यदि तैयारी होती है तो फिर से उसकी असर कम हो सकती है। तीसरी बात है कि हमने जो स्थितियां पैदा की है नदी घाटी में, कई जगह पे बड़े बांध बनाए हैं, कई जगह पे एम्बैंकमेंट्स बनाए हैं और कई जगह पे हमने ड्रेनेज लाइंस को एनक्रोच किया है या उसको चोक कर दिया है। हमने बहुत सारे जो नम भूमि थी या छोटे तालाब थे, लेक्स थे, उसको एनक्रोच किया है। तो ये सब जब हम करते हैं तो उसका असर बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे पिछले महीने कश्मीर में फ्लैश फ्लड्स आए और जिससे कि कई लोग मर गए। जब एनालिसिस हुआ तो पता चला कि वो जिस रास्ते से पानी को निकलना था उसके ऊपर लोगों ने मकान बना दिए थे। जब आप नदी को अपना रास्ता नहीं देंगे, स्ट्रीम्स को अपना रास्ता नहीं देंगे, तो फिर वो बाढ़ विभीषिका का रूप लेगी। ऐसे कई कारण हैं जिससे हमें समझने की जरूरत है कि कब हम आमंत्रित करते हैं विभीषिका को।
भारत में जो फ्लड्स का डिजास्टर मैनेजमेंट रहा है वो उसका क्या इतिहास रहा है और अभी वो कितना कारगर या कम कारगर है?
फोरकास्टिंग उसका सबसे प्रथम स्टेप होता है, दूसरा होता है प्रिपेयर्डनेस और तीसरा होता है कि आपकी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म कैसी है और तैयार है कि नहीं। कुछ अच्छी बातें हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट में, जैसे एक अच्छा फोर्स है NDRF, नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स जो है, वो हर जगह पे जहां पर भी रेस्क्यू की जरूरत पड़ती है वो पहुंच जाता है और वो लोगों को बचा लेता है। लेकिन जो NDMA, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एक संसद के कायदे से बनाई गई है और उसके साथ साथ उसके कायदे में प्रावधान रखा गया था कि हर राज्य में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनेगी और हर जिले में डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनेगी, तो ये जो पूरा तंत्र है वो ज्यादातर कारगर नहीं रहा है। आपको सबसे महत्व की बात बता दूं कि जैसे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, तो प्रधानमंत्री को तो कई काम होते हैं, उनके पास इसके लिए काम नहीं होते हैं। इसलिए जो डिफेक्टो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है वो वाइस चेयरमैन होता है। अभी जो केंद्र सरकार है वो जब से आई है मई 2014 से, तब से कोई उपाध्यक्ष ही नहीं, यानी एक पूरा नेशनल डिजास्टर अथॉरिटी हेडलेस है।
ये थे हिमांशु ठक्कर और अब खेल समाचार पेशकश इंदु पांडे की।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं इंदु पांडे। भारत और श्रीलंका के बीच कल टेस्ट सीरीज का पहला मैच गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम श्रीलंका में खेला गया। टीम इंडिया इस दौरे पर 3 टेस्ट 5 वनडे और 1 T20 मैच खेलेगी। और अगर हम कल के मैच की बात करें तो कल का मैच पूरी तरह से भारत के नाम रहा। शिखर धवन ने अपने करियर के 24वें टेस्ट मैच में 5वां शतक जमाया। खास बात यह है कि धवन ने 11 टेस्ट मैचों के बाद टेस्ट टीम में अपनी वापसी की है। उन्हें मुरली विजय और KL राहुल के अनफिट होने के चलते यहां पे मौका मिला और इस मौके का उन्होंने पूरा फायदा उठाया। श्रीलंका की तरफ से नुवान प्रदीप सबसे सफल बॉलर रहे, जिन्होंने 18 ओवर में 64 रन देकर के 3 विकेट लिए। फॉर्मर क्रिकेट प्लेयर मदन लाल का कहना है,
तो आपको 5 बॉलर चाहिए भारतीय टीम आउट करने के लिए। आपके पास 2 बॉलरों से आप टीम आउट नहीं कर सकते, रंगना हैरत और नुमान प्रदीप से, ये तो उनके लिए तो मुश्किल तो है ही। बाकी जो है बॉलर बड़े ऑर्डिनरी से लग रहे हैं, मेरे को कोई इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता।
वैसे इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि जो भारत की क्रिकेट टीम है वो काफी मजबूत है श्रीलंका की क्रिकेट टीम के सामने। कल भारत ने पहले टॉस जीत करके बैटिंग करने का फैसला किया। इस तरह से पहले दिन का खेल खत्म होने तक 3 विकेट पे 399 रन बना लिए भारत ने। तो ये था हाल पहले दिन के खेल का।
ये थे इंदु पांडे और चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। बिहार में नीतीश कुमार आज फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस बार वो महागठबंधन से अलग होकर बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाने जा रहे हैं। उनके साथ आज पटना में सुबह 10 बजे बीजेपी के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी शपथ लेंगे। अमरीकी सेना में ट्रांसजेंडर लोगों के काम करने पर रोक लगाने की अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को लेकर काफी नाराजगी है। امریکہ میں پورو راشٹرپتی باراک اوباما کے سواستھ قانون کے بڑے حصے کو ختم کرنے کی ریپبلکن نیتاؤں کی کوشش کو پھر سے امریکی سینٹ میں جھٹکا لگا ہے۔ وینزویلا میں نئے سمویدھان لکھنے کے لیے نئی اسمبلی کے گٹھن پر رویوار کو ووٹنگ سے پہلے وپکش نے 48 گھنٹوں کی ہڑتال کا آہوان کیا ہے۔ امریکہ نے اس ہڑتال کے پہلے دن وینزویلا پر پرتیبندھ لگانے کی گھوشنا کی ہے۔ وینزویلا کے راشٹرپتی نے ان پرتیبندھوں کو خارج کر دیا ہے۔ لبنان کے شیعہ سنگٹھن حزب اللہ کے نیتا کا دعویٰ کہ حزب اللہ لبنان اور سیریا کی سیما پر جہادی لڑاکوں کے خلاف لڑائی میں بڑی سفلتا کے پاس پہنچ چکا ہے۔ بی بی سی سماچار۔
شکریہ ہریتا۔ اسی کے ساتھ مجھے ونیت کھرے کو دیجیے انمتی۔ شروتاؤں سے ہماری اگلی ملاقات ہوگی شام 7:30 بجے۔ دن بھر کے ساتھ اسٹوڈیو سنبھالا تھا تلک راج بھاٹیا نے۔